ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तृतीय संशोधन अध्यादेश 2073 जारी। बुद्ध जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। दूसरे चरण अंतर्गत काठमांडू उपत्यका के बागमती और सहायक नदी किनारे के जोखिम युक्त बस्तियों को हटाने का काम आज भी रहा जारी। नेपाली कांग्रेस आने वाले 5 वर्षों तक जिम्मेदार प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएगी, सभापति गगन थापा का कथन। और ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता पर कोई समझौता नहीं करेगा, सर्वोच्च नेता खामेनेई का संदेश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तृतीय संशोधन अध्यादेश 2083 जारी किया है। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार राष्ट्रपति पौडेल ने संविधान की धारा 114 की उपधारा 1 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर आज संपत्ति शुद्धिकरण यानी मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तृतीय संशोधन अध्यादेश 2083 को जारी किया। 2570वीं बुद्ध जयंती आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। हर साल वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन बुद्ध की पूजा आराधना और प्रवचन कर बुद्ध जयंती मनाई जाती है। बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही होने के कारण इस दिन नेपाल सहित विश्वभर के बौद्ध धर्मावलंबी श्रद्धा और भक्ति के साथ बुद्ध जयंती मनाते हैं। बुद्ध जयंती के अवसर पर आयोजित वृहद बौद्ध सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि वर्तमान बदलते राजनीतिक परिवेश में भी राष्ट्रीय एकता, सहिष्णुता और समावेशी विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए बुद्ध के पंचशील सिद्धांत मार्गदर्शक बन सकते हैं। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि आज का विश्व अनेक चुनौतियों, संघर्षों, असहिष्णुता, जलवायु संकट और मानवीय मूल्यों के क्षरण से गुजर रहा है। ऐसे में बुद्ध के उपदेश और भी प्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि शांति, सह अस्तित्व, मध्यमार्ग और करुणा पर आधारित बुद्ध का दर्शन विश्व समुदाय को स्थायित्व, सहयोग और आपसी विश्वास की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लुम्बिनी विश्व शांति मंच ने बुद्ध जयंती के अवसर पर लुम्बिनी की मिट्टी समृद्धि का रास्ता अभियान की घोषणा की है। अभियान के तहत भैरहवा लुम्बिनी क्षेत्र में 2570 पौधे रोपने का कार्यक्रम रखा गया है। ये जानकारी मंच के संस्थापक वासु गौतम ने दी। अभियान की घोषणा सिद्धार्थनगर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 स्थित श्री भैरहवा नमूना माध्यमिक विद्यालय से की गई। सरकार ने दूसरे चरण के तहत आज से काठमांडू उपत्यका के बागमती और सहायक नदियों के किनारे स्थित जोखिमपूर्ण बस्तियों को स्थानांतरित करने का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में थापाथली, सिनामंगल, गैरीगांव, शांतिनगर और मनोहरा क्षेत्र की बस्तियों को स्थानांतरित किया जा चुका है, जिसके बाद अब दूसरे चरण का काम शुरू किया गया है। बलखू क्षेत्र की 486 झोपड़ियों और वंशी घाट क्षेत्र की 200 संरचनाओं को बुलडोजर की मदद से खाली कराया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि वर्षा ऋतु में बाढ़ और डूबान से होने वाले बड़े मानवीय और भौतिक नुकसान को रोकने व नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए इस कदम को उच्च प्राथमिकता दी गई है। काठमांडू के बागमती और उसकी सहायक नदियों के किनारे के जोखिमपूर्ण जीवन से मुक्त होकर सुरक्षित भविष्य की तलाश में वहां के निवासी अब सरकार के कदम का समर्थन करने लगे हैं। काठमांडू के बलखू और वंशीघाट क्षेत्र में रहने वाले जिनके पास अपना घर, जमीन या पैतृक संपत्ति नहीं है और जिनकी आय भी कम है, वे अब दशरथ रंगशाला पहुंचकर अपना विवरण दर्ज करा रहे हैं। साथ ही विवरण संकलन के दौरान वहां पहुंचे नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है और आवश्यक मनोपरामर्श भी दिया जा रहा है। इससे उनमें मौजूद भय कम होकर आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल रही है। अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम बागले और परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल से नेपाल भ्रमण पर आए अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गोर ने आज अलग अलग मुलाकातें की हैं। अर्थ मंत्रालय के अनुसार अर्थमंत्री डॉ वागले और विशेष दूत गोर के बीच दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और विकास सहायता सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसी तरह परराष्ट्र मंत्री खनाल और विशेष दूत गोर के बीच हुई बैठक में नेपाल अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने के विषय पर चर्चा हुई। परराष्ट्र मंत्रालय के अनुसार द्विपक्षीय निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भी बातचीत हुई थी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को फोर जी
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को फोर जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को फोर जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को फोर जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। 137वां अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आज देश में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री रामजी यादव ने इस अवसर पर तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की घोषणा की है। वीडियो संदेश जारी करते हुए उन्होंने बताया कि पहली घोषणा के तहत 5 वर्षीय राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया जाएगा, जिससे प्रत्येक श्रमिक के सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित कार्य वातावरण के अधिकार सुनिश्चित होंगे। दूसरी घोषणा में विदेश में कार्यरत नेपाली श्रमिकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद, सूचना आदान प्रदान और समस्या समाधान को प्रभावी बनाने के लिए विदेश स्थित नेपाली दूतावासों में श्रम सहचारी और काउंसलर अधिकारियों द्वारा सप्ताह में एक बार फेसबुक लाइव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तीसरी घोषणा के अनुसार योगदान पर आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष में शामिल श्रमिकों को प्लॉट खरीदने के लिए 6% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा श्रमिक 1,50,00,000 रुपए तक नियमानुसार ऋण भी ले सकेंगे। मंत्री यादव ने बताया कि नीतिगत सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना और नए रोजगार सृजन के कार्यक्रम भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। श्रमिक दिवस के अवसर पर नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा कि पार्टी आगामी 5 वर्षों तक जिम्मेदार, सशक्त और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में रहने का स्पष्ट जनादेश दिया है, इसलिए पार्टी जनादेश के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। नेपाल मेडिकल काउंसिल ने 19 और चिकित्सकों के पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। काउंसिल ने बताया कि नेपाली नागरिकता त्याग कर विदेशी नागरिकता लेने वाले 19 चिकित्सकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ सतीश कुमार देव ने यह जानकारी दी। इन चिकित्सकों ने नेपाली नागरिकता छोड़कर ब्रिटिश, कनाडाई, अमेरिकी, न्यूजीलैंड, जर्मन, ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, जिसके कारण उनका पंजीकरण रद्द किया गया। इससे पहले भी काउंसिल ने नेपाली नागरिकता त्याग कर विदेशी नागरिकता लेने वाले 17 चिकित्सकों के लाइसेंस रद्द किए थे। वैदेशिक रोजगार में आकर्षक वेतन का प्रलोभन देकर विभिन्न देशों में भेजने के नाम पर बड़ी रकम ठगी करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार जापान, कोरिया और अमेरिका में आकर्षक वेतन वाली नौकरी दिलाने का झांसा देकर 45 लोगों से कुल 3,14,00,000 रुपए ठगे गए। 13 थुम के सूरज लिंबू, सोलूखुम्बू के कमल बहादुर मगर और सागर शेरपा और काभरे प्लांचो के विनोद थापा, सूर्य प्रसाद कोयराला, सरोज गौतम और प्रहलाद खत्री को गिरफ्तार किया गया है, ये जानकारी पुलिस ने दी। सरकार ने जेएनजी आंदोलन में घायल हुए लोगों का विवरण सार्वजनिक कर दिया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में अंतिम बार 22 और नाम जोड़ने के बाद जेएनजी आंदोलन में घायलों की सूचीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसके बाद घायल व्यक्तियों का विवरण सार्वजनिक किया गया है। स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र के प्रमुख डॉ प्रकाश पुढ़ाथोकी के अनुसार हाल में प्राप्त 250 मामलों में से केवल 22 लोगों को ही घायल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसके बाद जेएनजी आंदोलन में घायलों का आधिकारिक विवरण सार्वजनिक किया गया। मंत्रालय के मानदंड के अनुसार जेएनजी आंदोलन के दौरान घायलों की कुल संख्या 2,660 तक पहुंच गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने कहा है कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में नई शुरुआत हो रही है और इसका भविष्य अमेरिका के बिना तय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लामी गणराज्य अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में संरक्षित करेगा। ईरान की सरकारी मीडिया में जारी उनके संदेश में कहा गया कि खामेनेई ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर किसी भी तरह से समझौते से इनकार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि फारस की खाड़ी में अमेरिकियों का एकमात्र स्थान इसके पानी की गहराई में है और इस क्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। यह संदेश इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी IRNA ने नेशनल पर्शियन गल्फ डे के मौके पर जारी किया है। ये दिन सन 1622 में पुर्तगाली सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकाले जाने की याद में मनाया जाता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्डेल द्वारा संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तृतीय संशोधन अध्यादेश 2083 हुआ जारी। बुद्ध जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। दूसरे चरण अंतर्गत काठमांडू उपत्यका के बागमती और सहायक नदी किनारे की जोखिमयुक्त बस्तियों को हटाने का काम आज भी रहा जारी। नेपाली कांग्रेस आने वाले 5 वर्षों तक जिम्मेदार प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएगी, सभापति गगन थापा का कथन। और ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता पर कोई समझौता नहीं करेगा, सर्वोच्च नेता खामेनेई का संदेश। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।